नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम स्कंध सात अध्याय दस श्लोक संख्या 12। मेरे पीछे बोलिए। कथा मदीया दुष्यमाण प्रियास्तम आवेश मामात्मन संतमेकम् सर्वेषु भूतेषु धियागमीशम् यजस्व योगेन च कर्महिन्वान् कथा। अनुवाद मेरे पीछे बोलिए। भले ही तुम इस भौतिक जगत में ही क्यों न रहो, लेकिन तुम्हें निरंतर मेरे उपदेशों तथा वचनों को सुनना चाहिए और मेरे ही विचार में लीन रहना चाहिए, क्योंकि मैं हर एक के हृदय में परमात्मा रूप में निवास करता हूँ। अतएव तुम सकाम कर्मों का परित्याग करके मेरी पूजा करो। तो यहाँ जो है तात्पर्य पढ़ने से पहले एक बार समझेंगे शब्द क्या है। आप लोग जानते हैं कि ये श्लोक कौन कह रहे हैं, किससे कह रहे हैं? भगवान नरसिंह देव बोल रहे हैं। किससे? प्रहलाद महाराज से बोल रहे हैं, है ना। तो पिछले श्लोक में नरसिंह भगवान ने जो बात बोली थी उसमें अंत में ये था दैत्य शराणाम अनुभुंज भोगान, कि दैत्यों के जो ईश्वर, दैत्यों के ईश्वरों का जो भोग है, मतलब एक वचन नहीं, भोगान बहुवचन, दैत्यों के ईश्वरों के जो भोग हैं उनको भोगो, अनुभुंक्षो। अनुभुंक्षो का मतलब उनकी परंपरा में दैत्यों के राजाओं ने जो जो भोग भोगे हैं उनको तुम भोगो, भगवान कह रहे हैं। आप समझ रहे हैं? तो जो पहला भगवान का आदेश था पहले पिछले श्लोक में, उसमें प्रहलाद जी को ये कहा था उन्होंने क्या, कि तथापि मनमंत्रम एतदत्र, एक मनमंत्र तक। कितना? एक मनमंत्र कितना होता है? 30 करोड़ साल। 30 करोड़ साल तक क्या करो? दैत्येश्वराणाम, दैत्येश्वरों का, दैत्येश्वरों के जितने भोग हैं वो सब भोगो, भगवान कह रहे हैं, है ना। तो भगवान तो ये बोल रहे हैं। तो प्रहलाद जी के मन में विचार आया कि इन भोगों से तो हमारे जो है और कर्म बनेंगे, बंधन होगा, कर्म का बंधन होगा। तो आज के श्लोक में अंतिम क्या है? कर्म हेमन, कर्म को खत्म करते हुए, कर्म को खत्म करते हुए, हिनवन, हिनवन ग्रंथ कर्म को खत्म करते हुए। तो अगले श्लोक में भगवान ये कहेंगे कि भोगे न पुण्यम, भोगों के द्वारा अपने पुण्यों को खत्म करो। कि तुमको जाना है मेरे धाम में, मेरे धाम में आना है ना। तो जितने तुम्हारे पुण्य हैं उनको छीन करो भोगों के द्वारा, है ना। ये अपने यहाँ का हिसाब किताब सब जो है निपटाओ। इस भौतिक जगत का जितना भी लेना देना है उसको खत्म करो। आप समझ रहे हैं? तो कर्म हिनवन, कर्म को जो है खत्म करते हुए। कैसे खत्म करना है? अगले श्लोक में आएगा कि भोगे न पुण्यम कुशले न पापम, भोगे न पुण्यम कुशले न, कुशल कर्म के द्वारा पापों को नष्ट करो, भोगों के द्वारा पुण्यों को नष्ट करो और कुशल कर्म के द्वारा पापों को नष्ट करो, पवित्र कर्म करके पापों को नष्ट करो। तो पुण्य और पाप नष्ट करना है। तो पहले जो है कुछ सकाम पुण्य किए तुमने ना, तो उनका जो है भोग निश्चित हो चुका है मिलना, तो उनको खत्म करो, है ना। और क्या है सबसे पहली पंक्ति में, कथा मदीया जुस्माणहा, जुस्माणहा का मतलब सेवन करते हुए, हा? क्या सेवन करते हुए, कथा मदीया मेरी कथाओं का सेवन करते हुए, है ना। तो प्रभुपाद इसमें कथा का संदेश या उपदेश अर्थ निकाल रहे हैं, और कथा का दूसरा अर्थ लीलाएं भी हैं, मेरी कथाएं वो तो स्पष्ट है कि मेरी लीलाएं, और जुस्माणहा का मतलब सुनना भी है, है? जुस्माणहा सदैव सुनते हुए या विचार करते हुए, तो सदा सुनते हुए। भोगों को भोगो, लेकिन कैसे भोगना है कि सदा मेरी कथाओं का श्रवण करते हुए। कथा मदीया जुस्माणहा प्रिया, ये प्रिया किसके लिए है, कथा मदीया प्रिया, यानी मेरी कथाएं बहुत प्रिया हैं, प्रिया है? कथा प्रिया, भक्तों को बहुत प्रिय लगती हैं, तो उनको हमेशा सुनते रहो, सुनते हुए जुस्माणहा मन सुनते हुए, कथा मदीया जुस्माणहा प्रिया, तुम, तुम का मतलब तुम, तुम, हाँ प्रहलाद को कह रहे हैं भगवान, तुम हाँ, क्या करते हुए जुस्माणहा सुनते हुए, मेरी कथाओं को सुनते हुए, कैसी कथाएं मेरी प्रिया हैं, बहुत प्रिय लगती हैं, कानों को बहुत प्रिय लगती हैं, है ना। रस, कथाओं का रस पीते हुए, कथा मदीया जुस्माणहा प्रियास तुम आवेश माम आत्मनि, आवेश आवेशित करके मुझ में आत्मनि, अपने मन को, अपने मन को मुझ में आवेशित कर दें, या अपने मन में मुझको आवेशित करके, एक ही मतलब है, मुझको अपने मन में आवेशित करके। आखिर भगवान के संग में हमारा जो मन है, अगर संग रहेगा, मन में चिंतन होगा, तो मन ही आवेशित होगा भगवान के द्वारा, आवेशित करके, मन को मुझ में आवेशित करके, या मुझको मन में आवेशित करके, एक ही मतलब है, है ना। तो माम आत्मनि, आवेश माम आत्मनि, संतम एकम, संतम का मतलब है जो विद्यमान है, एकम एकमात्र, सर्वेषु भूतेषु संतम, यहाँ है जो ऊपर जो संतम एकम लिखा है उसका जो संबंध है वो नीचे की लाइन से है, संतम एकम जो रहते हैं एकमात्र सर्वेषु भूतेषु, समस्त प्राणियों में निवास करते हैं, संतम निवास करते हुए, माम मुझको, मैं मुझमें जो है अपने मन को आवेशित करो, और मैं कैसा हूँ, संतम एकम सर्वेषु भूतेषु, समस्त प्राणियों में एकमात्र मैं निवास करता हूँ, अधि यज्ञम यज्ञों का भोगता हूँ मैं, ईशम और नियंता भी हूँ, अधि यज्ञम संतम एकम सर्वेषु भूतेषु अधि यज्ञम ईशम यजस्व। तो जो पहली जो क्रिया है जुस्माणा मतलब करते हुए, सेवन करते हुए, फिर आवेश मन करके, लेकिन अब करना क्या है, यजस्व पूजन करो, मेरा मेरा पूजन करो, यहाँ पर है आदेश पूजन करो, है ना। और जो ऊपर वाली क्रिया है जुस्माणा वो है करते हुए, सुनते हुए, सेवन करते हुए, है ना, फिर आवेश आवेशित करके, है ना, और फिर करना कुछ कार्य करते हुए और कुछ कार्य करके और फिर कुछ कार्य करो, है ना, यजस्व, है ना, ठीक है ना। तो तीन आदेश हैं, लेकिन एक आदेश है करने के लिए, और एक आदेश है करते हुए, और एक आदेश है करके, है ना। क्या करके, क्या करके, अपने मन को मुझ में आवेशित करके, और क्या करते हुए, सुनते हुए जुस्माणहा मदीया कथा, हाँ प्रिया मेरी प्रिय कथाओं का जो है सेवन करते हुए, और फिर क्या करो, यजस्व पूजन करो, है ना, योगेन योगेन योग के द्वारा पूजन करो, है ना। तो योग का मतलब भक्ति योग, भक्ति योग के द्वारा पूजन करो, कर्म हिनवन, हिनवन का मतलब त्यागते हुए, खत्म करते हुए, नष्ट करते हुए, कर्म को नष्ट करते हुए, ये भी नष्ट करते हुए, हिनवन नष्ट करते हुए, है ना। अब हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं, श्रील प्रभुपाद की। जब भक्त भौतिक दृष्टि से अत्यधिक ऐश्वर्यवान बन जाता है तो उसे ये नहीं सोचना चाहिए कि वो अपने सकाम कर्मों का फल भोग रहा है। तो पहला वाक्य प्रभुपाद का क्या, उसे नहीं सोचना चाहिए कि वो अपने सकाम कर्मों का फल भोग रहा है, यानी भोग रहा। तो भगवान ने पिछले श्लोक में कहा था ना कि भुंक्षो भोगान, भोगों को भोगो, है ना। तो यहाँ पर प्रभुपाद बता रहे हैं कि वो संसार की दृष्टि में भगवान ने कहा है कि तुम भोगो। आप सुन रहे क्या, भगवान ने पिछले श्लोक में जो कहा था कि भुंक्षो भोगान, कि दैत्यों के राजाओं के भोगों को भोगो, तो ये किस दृष्टि से कहा था, सबकी दृष्टि में तुम भोगो, सबकी दृष्टि में तुम भोगो भोगों को, अपनी दृष्टि में क्या नहीं भोगता, जो भक्त है वो अपनी दृष्टि में नहीं भोगता, है ना। तो प्रभु लिखते हैं कि भौतिक दृष्टि से अत्यधिक ऐश्वर्यवान बन जाता है भक्त तो उसे ये नहीं सोचना चाहिए कि अपने सकाम कर्मों का फल भोग रहा है। इस जगत में भक्त अपने सारे ऐश्वर्यों को भगवान की सेवा में लगाता है, क्योंकि वो ये योजना बनाता रहता है कि अपने ऐश्वर्य से भगवान की किस तरह सेवा करे। जैसा कि भगवान स्वयं सलाह दे रहे हैं, उसके पास जो भी भौतिक संपदा होती है उसे वो भगवान के यश को तथा उनकी सेवा के प्रसार में लगाता है। भगवान के यश का प्रसार और उनकी सेवा का प्रसार में लगाता है, है ना। तो यहाँ पर कथा मदिया जुस्माणा, जुस्माणा का मतलब यहाँ प्रभुपाद किस अर्थ में इसको ले रहे हैं, जुस्माणा मतलब फैलाना, प्रसार करना, जुस्माणा का मतलब सुनना है, जुस्माणा का मतलब सेवन करना है, जुस्माणा का अर्थ प्रभुपाद जो है इसको प्रसार में, कथा मदिया जुस्माणा यानी मेरी कथाओं को यानी मेरे संदेशों को क्या करो, जुस्माणा यानी फैलाने में, फैलाते रहो। प्रभुपाद जो है इस श्लोक का जो अर्थ ले रहे हैं वो हमारे शिक्षा के लिए कि हमें क्या करना चाहिए, आज की आवश्यकता क्या है, आज की आवश्यकता के अनुसार प्रभुपाद जो है इसका अर्थ ले रहे हैं इस प्रकार से। भगवान के यश को और उनकी सेवा, भगवान के यश तथा उनकी सेवा के प्रसार में लगाता है। तो कथा मदिया, कथा का जो है अर्थ प्रभुपाद रहे हैं संदेश या उपदेश जो भगवान के द्वारा दिया गया है, है ना। इन कथा का दूसरा अर्थ ये भी है जो भगवान के बारे में उनके चरित्र हैं, उनकी लीलाएं हैं, वो भी हैं, है ना। और जुस्माणा का मतलब सुनना भी है, सेवन करना भी है। आगे पढ़ते हैं, भक्त कभी भी ऐसे कर्म के फल को भोगने के लिए कोई भी सकाम कर्म या कर्म कांड नहीं करता। हाँ, कर्म हिनवन का एक दूसरा अर्थ भी प्रभुपाद दे रहे हैं, कर्म हिनवन का मतलब कर्म ना करते हुए कोई भी कर्म सकाम कर्म नहीं करना है। प्रहलाद जी को आदेश दे रहे हैं कि मेरा पूजन करना है भक्तियों के द्वारा, लेकिन कोई सकाम कर्म नहीं करना है कि तुम्हें आगे भौतिक संसार के सुख प्राप्त होंगे। कर्म हिनवन का ये भी मतलब है, एक तो कर्म हिनवन का मतलब है कि पिछले आपके जो कर्म हैं उनको आप नष्ट करते हुए मेरा पूजन करो, और कर्म हिनवन का दूसरा अर्थ ये है कि जो नए कर्म हैं उनको ना करते हुए, त्यागते हुए नए कर्म नहीं करना। कैसे कर्म, सकाम कर्म, वेदों में कहे गए पुण्य कर्म उनको नहीं करना, तो दोनों अर्थ निकल रहे हैं। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, प्रत्युत वो ये जानता है कि ऐसा कर्मकांड अल्पज्ञ के लिए होता है, कर्म हिनवन, ये अर्थ ले रहे प्रभुपाद, कर्मकांड का त्याग करते हुए क्यों, अल्पज्ञों के लिए होता है, है ना। ऐसा गीता में श्लोक है ना अल्पज्ञों के लिए, कैसा श्लोक है वो, हाँ जी, हाँ वो तो है देवताओं की पूजा के लिए, लेकिन कर्म के लिए भी बताया ना भगवान ने, या मैं माम पुष्पिताम वाचम प्रबुदंति पश्चिता, अभी पश्चिता, अभी पश्चिता का मतलब है कम बुद्धिमान, या मैं माम पुष्पिताम वाचम प्रबुदंति पश्चिता वेदवाद रता पार्थ नानंदस्तीति वादिना, वेदवाद में वो लगे रहते हैं और इससे बढ़कर के कुछ नहीं मानते। इससे बढ़कर कुछ है काम आत्मान स्वर्ग पर आ, स्वर्ग को ही सर्व श्रेष्ठ मानने वाले, जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य मानने वाले, स्वर्ग पर आ काम आत्मान, और कामना अपने हृदय में उनकी भरी हुई है। काम आत्मान स्वर्ग पर आ जन्म कर्म फल वृद्धाम क्रिया विशेष बहुलाम भोग ऐश्वर्य गतिम प्रति भोगेश्वर्य प्रसक्ता नाम तया प्रति चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। तो भोगेश्वर्य में आसक्त और उसके द्वारा उनका चित्त अपृत हो चुका है तो व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो न, तो कृष्ण भावना मृत प्राप्त करने के लिए उनकी निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती है ना, तो अल्प चेतसाम है ना अप्रत चेतसाम तया प्रति चेतसाम। तो ये शब्द भगवान ने कहे हैं, तो इसी को प्रभुपाल जी लिख रहे हैं कि कर्म कांड अल्पज्ञ के लिए होता है। आगे प्रभुपाल लिखते हैं नरोत्तम दास ठाकुर ने अपनी कृति प्रेम भक्ति चंद्रिका में कहा है कर्म कांड ज्ञान कांड केवल विशेष भांड है। किसने लिखा है ये? नरोत्तम दास ठाकुर ने। कर्म कांड ज्ञान कांड केवल विशेष भांड, कर्म कांड तथा ज्ञान कांड दोनों ही विष के पात्रों के तुल्य हैं। भांड होता ना भांड, भांड है बर्तन होते हैं बड़े बड़े बर्तन को भांड बोलते हैं है ना, भांडे भांडे भी बोलते हैं हिंदी में, विष के भांडे हैं, विष से भरे हुए हैं बड़े बड़े बर्तन कर्म कांड ज्ञान कांड विष के भांड हैं, भांडे विष के भांडे हैं, तो विष के भांडे हैं कर्म कांड ज्ञान कांड केवल विशेष भांड। जो इन दोनों की ओर आकृष्ट होता है वो अपने मनुष्य जीवन को नष्ट कर देता है, अतएव भक्त कभी भी कर्म कांड या ज्ञान कांड में रुचि नहीं रखता, वह तो भगवान के अनुकूल सेवा में अनुकूल लेने कृष्णानुशीलनम अथवा भक्ति संबंधी आध्यात्मिक कार्यों के अनुशीलन में रुचि रखता है। तो यहाँ प्रभुपाद का तात्पर्य समाप्त हुआ। अब हम श्लोक के शब्दों पर और विचार करेंगे। तो नरसिंह भगवान प्रहलाद जी से क्या कह रहे हैं, कथा मदीया जुस्माणा, तो मेरी जो कथाएं हैं ये जुस्माणा तुम जो है इनका सेवन करते रहो, मेरी कथाओं का सेवन करते रहो, तो देखने में लगेगा कि तुम भोगों को भोग रहे हो लेकिन वास्तव में तुम क्या भोग रहे हो, भक्ति रस कथा रस जुस्माणा का मतलब तुम भोगो कथाओं का रस भोगो। कथा मदीया जुस्माणा प्रिया प्रिया, ये जो कथाएं हैं मेरी कानों को बहुत प्रिया हैं, है ना, ऐसा आता है श्रीमद् भागवत में कथाएं कानों को बहुत प्रिय लगती हैं। नहीं कर्ण रसायना कथा कैसा श्लोक है, सताम प्रसंगान नहीं नहीं यही है कथा सताम प्रसंगान मम वीर संविदो भवंति हृत कर्ण रसायना कथा, है ना, सताम प्रसंगान मम वीर संविदो, तो सताम सत्पुरुषों की संगति में मेरे पराक्रम से संबंधित होती है भवंति हृत कर्ण रसायना कथा, हृदय और कर्ण के रसायन कथा होती है, जो हृदय और कर्ण के लिए रसायन है, रस आयन जिसमें रस से भरे हुए, रस आयन का मतलब रस से भरा हुआ आयन, आयन ऐसे होता है ना आयन, और भी शब्द होता है ना आयन रसायन रस का आयन है ना, उसी प्रकार से जैसे और भी शब्द है इस तरह का रामायण, राम जिसमें राम से भरी हुई है जो कथा रामायण कहलाती है, रसायन रस से भरा हुआ आयन, आयन माने स्थान, नारायण हाँ नारायण नार में जो निवास करते हैं, नार माने जल नारायण है ना, रसायन जिसमें रस रहे, तो रस कथाएं जो है भवंत हृत करना हृदय और कानों के लिए रसायन, हृदय को रस देने वाली और कानों को रस देने वाली कथाएं होती हैं, भवंत हृत करना रसायना कथा, तज्जोषणादास स्वपि वर्ग वर्तमनी श्रद्धा हृदय भक्ति रनु क्रमिष्यति। तज्जोषणाद, यहां भी जोषणाद, यहां जोषमाणा लिखा है, तज्जोषणाद उनका सेवन करने से अपवर्ग वर्तमान यानी भगवान के मार्ग में श्रद्धा रति भक्ति अनुक्रम से क्रम पूर्वक होती है, श्रद्धा रति और भक्ति क्रम पूर्वक आती है। तो कथाएं जो है रसायन, यहां पर कहा है प्रिया कथाएं, प्रिया हैं, अत्यंत प्यारी हैं भगवान की जो कथाएं लीलाएं हैं बहुत प्यारी हैं, भगवान जो लीलाएं करते हैं बहुत प्यारी हैं, भगवान जो है जो भी लीलाएं करते हैं चाहे वो प्रेम की लीलाएं करें और चाहे युद्ध की लीला करें, भक्तों को सब प्यारी होती हैं। केवल ये नहीं कि रास लीला तो बहुत प्यारी है लेकिन जो युद्ध लीला है वो प्यारी नहीं है, भगवान की प्रत्येक कथा प्यारी है, कुरुक्षेत्र की लीला भी बहुत प्यारी है और भगवद गीता में जो संदेश है वो भी कथा है कृष्ण कथा, तो वो भी बहुत प्यारी है, भक्तों को बहुत प्यारी लगती है और श्रीमद् भागवत में उनके जो है बहुत से चरित्र हैं वो भी सब जो है कथाएँ प्यारी हैं, प्रिया ऐसा प्रिया है ना है? तो यहाँ पर नरसिंह भगवान क्या कह रहे हैं, कथा मदीया जुष्माणा प्रियास तुम आवेश माम आत्मनि, तो मुझको आवेशित करके मन में, अपने मन में मुझको आवेशित करके या अपने मन को मुझ में आवेशित करके, है ना। तो आवेशित का मतलब क्या है, बिजली की जो बिजली का आवेश होता है ना इलेक्ट्रिक चार्ज है, तो जब आ जाता है आवेश करंट है जिस तांबे के तार में करंट आ जाता है तो फिर वो तांबा नहीं रह गया, वो क्या हो गया, हाँ विद्युत हो गया वो, है ना, अब वो उसका विद्युतीकरण हो गया। तो आवेश का मतलब यही है, आत्मनि मन में जो है मुझको आवेशित करके, तो मन एक ही मतलब है कि मन को मुझ में आवेशित करके या मुझको मन में आवेशित करके, भगवान तो कह रहे हैं मन में मुझको आवेशित करके, आत्मनि का मतलब मन में और माँ माने मुझको, मुझको आवेशित करके, है ना। तो अगर है तो एक ही चीज कि भगवान की जो पवित्रता की जो विद्युत है वो मन में आएगी, है ना, तो मन में आवेशित करके, तो फिर मन क्या बन जाता है, मन जो है फिर भगवान के समान ही पवित्र बन जाता है। जैसे लोहे का टुकड़ा है आग में आपने रखा तो लाल हो गया, अब ये लोहा नहीं रह गया, अब क्या हो गया, ये आग हो गया, है ना। उसी प्रकार से मन भी जो है अगर भगवान में आवेशित हो गया, या जैसे लोहे या तांबे में अगर विद्युत प्रवाहित होती है तो अब ये लोहा या तांबा नहीं है, क्या हो गया, विद्युत हो गया, आप छोड़े तो करंट लगेगा। तो मन जो है जब आवेशित हो जाता है भगवान में तो फिर ये मन जो है मन का कार्य नहीं करता है, ये भगवान का कार्य करता है, उसका मन जो है फिर भगवान का कार्य, मन भी जो है भगवान के समान पवित्र बन जाता है, विद्युत बन गया। तो उसके मन में जितने भी विचार आते हैं वो भी पवित्र हो जाते हैं। आवेश माम आत्मनि संतम एकम सर्वेशु भूतेषु अधियज्ञम, एकमात्र सर्वेशु भूतेषु, तो भगवान एकम शब्द का प्रयोग कर रहे हैं कि एकमात्र समस्त प्राणियों में मैं हूं, भगवान एकमात्र है, एक है समस्त प्राणियों में है। कैसे हैं, अलग अलग जैसे गीता में 13वें अध्याय के 17वां श्लोक है, उसमें भगवान क्या कह रहे हैं, पृथक ओ क्या सा है, विभक्तम एव अविभक्तम च भूतेषु विभक्तम एव च स्थितम, अविभक्तम च भूतेषु, समस्त प्राणियों में अविभक्त हैं, विभक्त नहीं है, विभक्तम एव च स्थितम, विभक्त जैसे स्थित हैं, विभक्त जैसे स्थित हैं, भगवान जो है परमात्मा के रूप में समस्त प्राणियों में अलग अलग जैसे स्थित हैं। कि आपके हृदय में एक परमात्मा है चार भुजाओं के अष्टदल कमल के ऊपर विराजमान है, एक परमात्मा है वो आपके मित्र की तरह कार्य कर रहे हैं और बिल्कुल आपके ही बारे में सोच रहे हैं, है ना, आपको ही दिशा निर्देश कर रहे हैं या स्मृति ज्ञान अपोहनम पैदा कर रहे हैं, वो आपका ही आपके साथ एक मित्र हैं, बिल्कुल आपके साथ हैं, पूरा आपके बारे में ही सोच रहे हैं, आपको ही जो है दे रहते हैं गाइडेंस भी। और मेरे हृदय में जो परमात्मा है वो मुझे गाइडेंस दे रहे हैं, तो विभक्तमेव, अलग अलग जैसे स्थित हैं, लेकिन है क्या अविभक्त, विभक्त नहीं है ना। लेकिन जीव, जीव नहीं हो सकता ऐसा। जो जीव है, है? जो जीव इस मेरे शरीर में है, मैं हूं एक जीव, मैं अपने शरीर में हूं, तो आपके शरीर में नहीं हो सकता। और अगर मैं आपके शरीर में आऊंगा तो मुझे अपने शरीर छोड़ना पड़ेगा, और आपके शरीर में आऊंगा तो फिर आपको ही जो है असुविधा होगी। दो जीव अगर एक शरीर में आ जाएंगे तो असुविधा होगी। कभी होता है ना, कोई भूत अगर आ जाता है तो फिर उसको असुविधा होती है, दूसरी आत्मा आ गई, वो अपने हिसाब से काम कर रही है ना। तो जीव जो है ये नहीं हो सकता कि वो विभक्त हो जाए। जीव विभक्त नहीं हो सकता। एक जीव से जो है अनेक जीव नहीं बन सकते, एक जीव से दो जीव भी नहीं बन सकते कि एक जीव टूट करके दो जीव बन जाए, विभक्त नहीं हो सकता। लेकिन भगवान, भगवान जो है विभक्त हो सकते हैं परमात्मा के रूप में, प्रत्येक जीव में अलग अलग जैसे, लेकिन तो भी एक है, विभक्त नहीं है। समझ रहे आप? भगवान जो है एक ही है, लेकिन प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा के रूप में। तो एक उदाहरण दिया जाता है सूर्य का, सूर्य का उदाहरण दिया जाता है कि सूर्य आकाश में एक है और उसका प्रतिबिंब अलग अलग जो जल से भरे घड़े हैं उनमें दिखाई पड़ रहा है। तो इस तरह से उदाहरण दिया जाता है, जैसे प्रभुपाद ने उदाहरण दिया कि सूर्य ऊपर, जब सिर के ऊपर सूर्य होता है तो 5000 किलोमीटर के क्षेत्र में चारों तरफ लोगों के सिर के ऊपर ही सूर्य होता है, हर कोई कहता है मेरे सिर के ऊपर सूर्य है। तो ये उदाहरण कुछ समझने के लिए है, लेकिन पूरी तरह से ये उदाहरण मतलब बनता नहीं पूरी तरह से, क्योंकि यहां तो प्रत्येक जीव के हृदय में जो परमात्मा के रूप में है वो कार्य भी कर रहे हैं। आप सुन रहे हैं, अलग अलग कार्य कर रहे हैं प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा, अलग अलग कार्य कर रहे हैं। सूर्य तो जो एक है उसका प्रतिबिंब जो पड़ रहा है घड़े में, तो वो प्रतिबिंब अलग अलग कार्य थोड़ी कर रहे हैं। अगर सूर्य मान लो बदली आ गई तो सब सूर्य ढक जाएंगे कि नहीं? वो तो प्रतिबिंब है, वो अलग अलग कार्य नहीं कर रहे हैं, है ना। या सबके सिर के ऊपर सूर्य है, सब हर कोई कहते मेरे सिर पे सूर्य है, लेकिन जब बदली आ जाएगी तो सबके सिर में सूर्य जो है ढक जाएगा। तो एक कार्य ही हो रहा है ना, सब प्रतिबिंब, क्योंकि वो प्रतिबिंब है, उनमें जो है अलग अलग जैसा मतलब कार्य करने की शक्ति नहीं। लेकिन परमात्मा के रूप में प्रत्येक जीव के हृदय में जो है वो अलग अलग कार्य कर रहे हैं, और प्रत्येक जीव के को जो है निर्देशन दे रहे हैं, और भौतिक प्रकृति को भी निर्देशन दे रहे हैं इसके शरीर को बनाने में। मयाध्यक्षेण प्रकृति सोयते सचराचरम, जैसे ही जीव वीर्य के आश्रय, वीर्य का आश्रय लेकर के माता के उदर में जाता है, तो वो जो कण है उसका तो कोई आकार नहीं होता है, लेकिन उसको आकार कैसे देती है प्रकृति, भौतिक प्रकृति आकार देती है उसके शरीर को, और उसके साथ में परमात्मा, जीव के साथ में परमात्मा है, वो उसको निर्देशन देते हैं किसका आकार कैसे बनाना है शरीर का। तो किसी को गोरा बनाना है, किसी को काला बनाना है, किसी को कम गोरा, किसी को कम काला, किसी को ज्यादा गोरा, किसी को ज्यादा काला, तो वो भी निर्देशन भौतिक प्रकृति को देते हैं। तो परमात्मा जो है प्रत्येक जीव के साथ में है, उसके शरीर का जो है जैसे कैसे निर्माण होना है, किसी का शरीर अच्छा होता है, किसी का शरीर खराब होता है, कुरूप होता है, और किसी के ये तिल है, कोई इधर चिन्ह है, कोई इधर चिन्ह है, किसी का इधर टेढ़ा है, किसी का उधर टेढ़ा है, वो भी परमात्मा के निर्देशन में होता है। किसी का शरीर जन्म से ही खराब होता है तो वही परमात्मा के निर्देशन में। तो परमात्मा इतना निर्देशन दे रहे हैं प्रकृति को, तो इतना सब जो निर्देशन परमात्मा दे रहे हैं, और अलग अलग जीवों के लिए अलग अलग डायरेक्शन दे रहे हैं। तो ये उदाहरण पूरी तरह से समझा नहीं सकते आप इस तरह से, लेकिन ये अचिंत महिमा है भगवान की कि इसमें कहा गया संतम एकम सर्वेशु भूतेषु और फिर अधियज्ञम। अधियज्ञम का मतलब है कि भोगने के लिए, यज्ञों को भोगने के लिए। प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा भोगना चाहते हैं। क्या भोगना चाहते हैं? यज्ञों को भोगना चाहते हैं। यज्ञ ही भोगना चाहते हैं वे, और कुछ नहीं भोगना। इंद्रिय तृप्ति नहीं भोगना चाहते। जीव इंद्रिय तृप्ति भोगना चाहता है, भौतिक शरीर में जीव इंद्रिय तृप्ति भोगना चाहता है, लेकिन जो परमात्मा है वो अति यज्ञ है। वो केवल यज्ञ भोगतारम यज्ञ तपसाम, यज्ञ तपस्या ही भोगते हैं। अगर उनको आप कुछ भोग देना चाहते हो तो ये नहीं है कि भाई लोग क्या कहते हैं आत्मा सु परमात्मा, मतलब मुझे आप संतुष्ट कर दो तो परमात्मा संतुष्ट हो जाएंगे। नहीं कोई कहे कि भाई मैं जितनी इंद्रिय तृप्ति करूं खूब खा लूं तो परमात्मा संतुष्ट हो जाएंगे, मेरे हृदय में परमात्मा भी तो हैं, वो भी खा रहे हैं, वो भी स्वाद ले रहे होंगे। क्या ठीक है? आप जो है अच्छे अच्छे भोग भोग रहे हैं तो क्या परमात्मा भी भोग रहे हैं आपके साथ में? नहीं भोग रहे हैं, वो नहीं भोग रहे हैं, अधियज्ञ हैं वो। वो आपके द्वारा जो आप जो कुछ भी त्याग करते हैं, भोगों को त्याग करते हैं उनकी प्रसन्नता के लिए, वो उसको वो भोगते हैं, उसको भोगते हैं वो। आप अपने सुखों का त्याग करते हैं, अपनी इंद्रिय तृप्ति का त्याग करते हैं उनकी प्रसन्नता के लिए, तो वो जो वो सुख है वो भोगते हैं। क्या जो सुख आपने त्यागा, समझे मेरी बात, जो सुख आपने त्यागा उनके सुख के लिए, वो सुख है वो लेते हैं, अधियज्ञ हैं वो। तपस्या को भोगते हैं, जो कष्ट आप जो है उनके लिए उठाते हैं, उनके लिए आप कष्ट उठाते हैं उसको वो भोगते हैं। तपस्या मंगल आरती के लिए, हाँ आपने जो है निद्रा का त्याग किया है ना, आपने नींद छोड़ी, मंगल आरती में आना है, हैं तो वो जो कष्ट आपने उठाया उसको वो भोगते हैं, क्योंकि वो तपस्या को भोगने वाले हैं, यज्ञों को भोगते हैं। आपको जो है बहुत संपत्ति और सुख संपत्ति मिल रही है, लेकिन आप फिर भी हरे कृष्ण आंदोलन में भक्त बने रहे, आपने जो है उस अवसर को छोड़ दिया, तो वो जो आपने त्याग किया है, वो यज्ञ आपने किया है उसको भोगते हैं वो, अधियज्ञम। तो वो अधियज्ञ हैं, अधियज्ञम। और ईशम, ईशम का मतलब नियंता है, उनका नियंत्रण भी है। कितना नियंत्रण है? बहुत नियंत्रण है। हिजस्व योगेन, तो उनको योग के द्वारा उनका पूजन करो, योगेन है तो कौन सा योग? भक्ति योगेन है ना, वो कैसा है भक्ति योगेन? भक्ति योगेन धन्यत्याश वैराग्यम, हाँ कैसा है वो? वासुदेवे भगवती, वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजिता, वासुदेवे भगवती भक्ति योग, भक्ति योग प्रयोजिता जनत्याशु वैराग्यम ज्ञानम चेत हेतुकम। तो भक्ति योग है ना, तो भक्ति योग के द्वारा है ना, वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजिता जनत्याशु, तो प्रयोजिता। तो यजस्व योग इनका मतलब भक्ति योग के द्वारा उनका पूजन करो, सकर्म हिनवन, और कर्म को जो है त्यागते हुए। तो पिछले कर्म है उनको नष्ट करते हुए, ये भी है पिछले कर्म को नष्ट करते हुए आप उनके द्वारा दिए हुए भोगों को स्वीकार करो तो पिछले कर्म आपके नष्ट होंगे, और अपने नए कर्म आप नहीं कर रहे हो। हिनवन का मतलब ये भी है कि उनका त्याग कर रहे हो, कर्म हिनवन। तो इस तरह से भगवान ने जो है मतलब आज के श्लोक में जो उपदेश दिया है तो उसमें हिनवन का मतलब है त्याग करते हुए। तो क्या करते हुए? एक तो कर्म का त्याग करते हुए या कर्म को नष्ट करते हुए, और फिर दूसरा करते हुए क्या है, जुस्माणा कथाओं को सुनते हुए या मेरे संदेश का प्रचार करते हुए, है ना। तो दो कार्य हैं जो करते हुए भगवान ने कहा है, और फिर क्या करके, आवेश आवेशित करके, हाँ मन में भगवान को आवेशित करके या मन को भगवान में आवेशित करके। मन में भगवान को थोड़ी आवेशित किया जा सकता है, बल्कि आवेशित तो मन ही होगा भगवान के द्वारा। तो मन को भगवान में आवेशित करके है ना। और फिर करना क्या है, पूजन करना है भगवान का, है ना। तो योगेन है, है ना। तो यहाँ योगेन का मतलब ये भी है, कथा सुन करके भी आप भगवान की पूजा करते हैं, उसको ज्ञान यज्ञ के द्वारा पूजन होता है भगवान का, और प्रचार कथा मदिया जुस्माणा का मतलब प्रचार करके। तो एक तो कथा सुनना है, श्रीमद् भागवत सुनना है, तो ये भी जुस्माणा शब्द का अर्थ है कि आप भागवतम क्लास में बैठते हैं तो कथा मदिया जुस्माणा प्रिया, आप कानों को बहुत प्रिय लगती हैं ऐसी कथाएं सुनते हुए। और दूसरा जुस्माणा का मतलब प्रचार करते हुए, संदेश का प्रचार करते हुए। तो आप अभी गीता मैराथन चल रहा है, तो ये जो है प्रभुपाद की पुस्तकें आप जो है फैला रहे हैं, प्रसार कर रहे हैं, लोगों के पास दे रहे हैं, तो एक ये भी अर्थ है इसका। तो दोनों अर्थों में है ना, तो प्रभुपाद ही अर्थ ले रहे हैं, क्योंकि उनका जो है उनकी चिंता है कि भौतिकवादियों को जो है उनका संदेश मिले, प्रभुपाद की पुस्तकें मिले, तो यहाँ पर ये भी अर्थ निकल रहा है ना। अब जो भगवान लीलाएं, एक तो लीलाएं हैं जो भगवान करते हैं शास्त्रों में है, और कुछ लीलाएं हैं हमारे साथ करते हैं, हम लोगों के साथ करते हैं भगवान, तो उनको भी अगर देखें तो बहुत आश्चर्य होता है। आज की मैं घटना बता रहा हूँ, मतलब इतना आश्चर्य है आप, मतलब कितना आश्चर्य होता है भगवान की कैसी कैसी लीलाएं हो रही हैं। तो अभी प्रद्युम्न प्रिया प्रभु भी आपको सुनाएंगे कुछ लीलाएं, तो बहुत आश्चर्य की बात है। अब आज का श्लोक जो है मुझे मिला था मोबाइल में, मैसेज में मिला था, तो ये श्लोक तो हमने तैयार किया था। तो कल रात में प्रद्युम्न प्रिया प्रभु जो है अपने मोबाइल में मेरे बहुत से प्रवचन भरे हैं इनके मोबाइल में, तो रात में सोते हुए जो है मोबाइल अपना चालू कर देते हैं, सुनते सुनते सो जाते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि सुनते सुनते सो गए, तो रात भर मोबाइल चलता रहा, तो रात भर वो मेरे प्रवचन चलते रहे। तो उसमें रात भर चलता रहा, तो मेरा नियम है 2:45 उठने का, तो जैसे मैं 2:45 उठा, तो अब कई प्रवचन एक के बाद एक प्रवचन निकलते गए, तो उस समय एक प्रवचन वो निकला जिसमें मैंने ये पाठ किया है, श्लोक और अनुवाद पढ़ पढ़ कर, श्लोक गाते हुए और अनुवाद पढ़ते हुए ये नरसिंह भगवान का अगर भाव की कथा चल रही थी, और जैसे मैं 2:45 उठा ये श्लोक निकला आज का श्लोक निकला, हरिओ। और दूसरा आश्चर्य ये कि रात में मैं 12:30 उठा था, तो कुछ काम लिखने का मैंने किया था, तो 12:30 से 1 बजे तक मैंने किया काम, तो एक बजे तक मैंने कुछ काम किया लिखने का, तो उस समय इनका मोबाइल चल रहा था लेकिन वो स्लीपिंग बैग के अंदर था, तो आवाज़ बिल्कुल नहीं आ रही थी, मतलब इतनी हल्की हल्की आवाज़ आ रही थी कि कुछ नहीं सुनाई पड़ रहा है। लेकिन फिर कैसे ये मोबाइल जो है स्लीपिंग बैग के बाहर आ गया और वो मुझे सुनाई पड़ा स्पष्ट, उस समय जब मैं 2:45 उठा, मतलब ईशम है ना ये ईश, तो मतलब उनका नियंत्रण देखो किस तरह से है, कितना आश्चर्यजनक नियंत्रण है। तो ये भी मुझे लिखना है, क्योंकि ये लिखनी चाहिए, क्योंकि ये भी कथा मदिया जुस्माणा, मतलब ये भी कथाएं जो है लोगों के पास पहुंचनी चाहिए भगवान की, क्योंकि भगवान की कैसी नई नई लीलाएं होती हैं, है ना, सोचिए कैसी अद्भुत लीलाएं होती हैं। तो प्रद्युम्न प्रिया प्रभु आपको कुछ और लीलाएं सुनाएंगे, इसके बाद शायद कुछ प्रश्नोत्तर कर सकें हम लोग। हरि बोल।
हरे कृष्ण, धन्यवाद।